हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 8 and 9। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति रूपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 8। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी बता रहे हैं संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकं अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकं अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकं अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकं अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकं अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकं अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकं अध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। शब्दों का अर्थ स वह संहितां वैदिक साहित्य भागवतीं भगवान से संबंधित कृत्वा करके अनुक्रम्य शुद्धि तथा आवृत्ति द्वारा च तथा आत्मजम अपने पुत्र शुकम शुकदेव गोस्वामी को अध्यापयामास अर्थात पढ़ाया निवृत्ति आत्म साक्षात्कार का मार्ग निरतम संलग्न मुनि मुनि ने। अनुवाद श्रीमद् भागवतम का संग्रह कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यास देव ने इसे अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया जो आत्म साक्षात्कार में पहले से निरत थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि श्रीमद् भागवतम व्यास द्वारा ही संग्रहित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत हैं। श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूलतः परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में परिपूर्ण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदय में गहरे पाइट कर प्रभाव डालता है। सारे संसारी पुरुष इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी वैदिक साहित्य को अपने भव रोगों की दवा पाते हैं। शुकदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवतम पढ़ाई। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत की संग्रह तथा तिथि को लेकर मतभेद है, किंतु श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोभाव के पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे तो उन्होंने कली का निरादर किया। शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है, अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन की तिथियों का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर चलने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भाव रोग का या कि संसार के तापों को पूर्णतया रोकने का इलाज है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। नारद मुनि के जाने के बाद शौनक मुनि सुत गोस्वामी से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तद तद अभिप्रेतम ततः किम अकरोत् भवत्, कि उनके जाने के बाद वेद व्यासी ने क्या किया, तो वो बता रहे हैं कि वेद व्यासी जब समाधि में अधिष्ट हो गए, उनके जाने के बाद उन्होंने अश्वन किया, पवित्र होने के बाद वो भगवान के ध्यान में लग गए और उन्होंने देखा कि पश्यत् पुरुषम् पूर्णम् मायां च तदपाश्रय। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को और माया को देखा जो कि उनके आश्रित थी, और उनके आश्रित थी। भले ही माया भगवान के अधीन है लेकिन फिर भी यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, परंतु सारे जीवों को सम्मोहित कर देती है और वो माया के कारण ही उसके प्रभाव से सम्मोहित होकर आत्मानं त्रिगुणात्मक। वेदव्यास जी देख रहे हैं अपनी समाधि में कि समस्त जीवों को मोहित करती है, जिसके कारण जीव खुद को त्रिगुणात्मक कहते हैं। हालांकि जीव स्वयं माया से परे हैं लेकिन माया के मोह के कारण वो अपने आप को त्रिगुण आत्मिक कहता है, यानी शरीर से भिन्न होते हुए भी अपने आप को यह भौतिक शरीर समझता है। और यही जीव का अनर्थ होता हुआ देखा उन्होंने, फिर सोचा कि जीव का अनर्थ कैसे होगा, तो वो बताते हैं अनर्थो पशम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज। केवल अधोक्षज भगवान में भक्ति उत्पन्न करने से ही जीव का अनर्थ दूर होगा। अब अधोक्षज भगवान के अंदर किस प्रकार से भक्ति उत्पन्न की जाए, तो कहते हैं लोकस्य आजानतो वेद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। अब यहाँ पर दो चीजें बताएं कि लोक जो है वो अजानत है, यानी कि लोक के अंदर कोई अक्कल नहीं है, उसको कुछ खबर नहीं है कि किस तरह से हम अपने इस अनर्थ को दूर करें। और वेद व्यास जी की क्या क्वालिटी है, लोकस्य अजानंतो विद्वांस, वो स्वयं विद्वान है। केवल वही ये कार्य कर सकते थे कि जीवों के इस अनर्थ को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, चक्रेत सात्वत संहिताम। यहाँ पर ये बात समझने की है कि उन्होंने क्या बताया कि अधोक्षज भगवान में भक्ति मुक्ति जब तक जीव की उत्पन्न नहीं होती है तब तक जीव का अनर्थ दूर नहीं होता है। और अधोक्षज भगवान किसके लिए कहा गया है? ये अधोक्षज शब्द जो है वो श्री कृष्ण के लिए रिजर्व्ड अर्थ है। अधोक्षज का मतलब होता है वह जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो, यानी कि इंद्रियों से आंख का, जिससे मतलब वो आंख का विषय नहीं हो सकते, वो कान का विषय नहीं हो सकते, वो शरीर का विषय नहीं हो सकते, भौतिक इंद्रियों के समस्त जाल से, भौतिक चीज से बिल्कुल परे, माया से परे, स्पिरिचुअल वस्तु यानी कि हमारी इंद्रियों की पहुंच जहां तक नहीं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है क्या देवी देवता भी अधोक्षज है? नहीं, देवी देवता आदि जितने भी हैं वो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, उनका शरीर प्राकृतिक है, प्राकृतिक शरीर है, लेकिन अब वो तीनों गुणों में से सत्वगुण में स्थित होते हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों से उनका शरीर सुपीरियर है, परंतु अधोक्षज जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी हो नहीं सकता है। और वो इस बात को आगे वाले श्लोक में क्लियर करेंगे कि अधोक्षज कौन है, लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षज है, कि अधोक्षज भगवान की भक्ति के द्वारा ही यह अनर्थ जो जीव का है, जो माया के द्वारा अपने आप को मोहित किए हुए है जीव, केवल भक्ति योग के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, उसका उपशमम किया जा सकता है। और जीव के अंदर भक्ति उत्पन्न कैसे होगी? वो उस भक्ति को उत्पन्न करने के लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण का संग्रह किया, चक्रे सातित संहितम संग्रह। ये श्रीमद् भागवतम यह इतना बड़ा ग्रंथ जो 18,000 श्लोक जिस पर है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, ये वेद व्यास जी ने कोई टाइम पास करने के लिए नहीं लिखे हैं। ये इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि जो लोकस्य अजाना, तो जो अजाना लोक हैं, जो जिनको कुछ नहीं पता है कि उनका कल्याण कैसे होगा, इसके लिए चक्रे सात्वित संहिता, इस सात्वित संहिता यानी कि उसको पढ़ने के लिए भी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कि वो भगवान के पवित्र सात्व, कृष्ण के भक्त होने चाहिए। केवल भक्त को ही पढ़ाया जा सकता है श्रीमद् भागवतम, और उस वो ही एकमात्र कल्याणकारी है, सिर्फ उसी से जीव का कल्याण होगा। और इसी से अनर्थों का निवारण कैसे होगा? श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो एक साथ तीन रिजल्ट प्राप्त हो रहे होते हैं। एक साथ एक ग्रास जब वो खाता है, एक एक करके जैसे जैसे ग्रास खाता जाता है, उसके साथ तीन रिजल्ट एक साथ आपको प्राप्त होते हैं। जैसे सुख मिलता है, अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन अगर हम खाएंगे तो आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, साथ में शरीर को बल भी प्राप्त हो रहा होता है क्योंकि नहीं खाया होता है सुबह से और खा रहे होते हैं तो शरीर में एनर्जी भी मिल रही होती है, और उसके साथ साथ भूख भी समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार केवल भागवतम को यस्याम वै श्रूयमाणानाम, जैसे ही उसको श्रवण करते हैं। अब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि देखो, भागवतम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि उसको सेंटर में रख के केवल परिक्रमा की जाए, उसको हार पहनाया जाए, उसको अगर आदर एक अच्छा है, लेकिन वास्तव में कल्याण कब होगा? यस्याम वै श्रूयमाणानाम, कि उसको श्रवण करने से कृष्ण परम पुरुष है, वो कृष्ण जो परम पुरुष है। अब देखो यहाँ पर वेदव्यासी कृष्ण परम पुरुष है, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, पहले कहा क्या? साक्षात भक्ति अधोक्षज है, साक्षात भक्ति अधोक्षज है, पहले बोल दिया अधोक्षज भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन उस बात को यहाँ पर वापस से क्लियर करते हैं कि वो भक्ति केवल और केवल कृष्ण जो परम पुरुष भगवान है उसके लिए, भक्ति का विषय और कोई नहीं हो सकता। भक्ति का मतलब होता है जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अपने वास्तविक कृष्ण के लिए भक्ति हित्वा, के भक्ति जो है उसका मतलब है कि आपके हृदय में कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा ना हो, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल कृष्णानु, सिर्फ कृष्ण के लिए अनुकूल हो, जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया जाए उसे भक्ति किया जाता है। किसी की भी देवी देवता की या किसी और की भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति यहाँ पर साफ साफ बताया गया, यस्याम वैष्णोयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पत्ति। भक्ति उत्पन्न होती है श्रीमद् भागवतम महापुराण के बाद। अगर किसी के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई है तो समझो वो अभी तक श्रीमद् भागवतम महापुराण को समझ ही नहीं पाया। श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने के बाद भी यदि वो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की भक्ति कर रहा है तो फिर या तो उसने श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ा ही नहीं है या तो जिससे पढ़ा है उसने इसको सही पढ़ाया नहीं है। क्योंकि साफ साफ कह रहा है श्रीमद् भागवतम महापुराण के शब्द, एक एक शब्द कितना गहरा है वो बता रहा है। यस्याम वैश्वयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा। मनुष्य के हृदय के अंदर भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न हो के रहेगी और उसके साथ साथ तीन काम और कौन से होंगे, शोक मोह भयापह। शोक समाप्त हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा, भय समाप्त हो जाएगा। शोक का क्या मतलब होता है कि जो भूतकाल में हमारे साथ कोई अगर दुखदायक घटना होती है तो फिर हम, हमारे जीव का ये स्वभाव है कि बार बार उसको याद करके रोते हैं, बचपन की बात को या फिर बाद में भी। पहले जो हमारे साथ कोई बहुत ज्यादा दुखदायक घटना होती है उसको जब हम शोक करते हैं ना, याद करते हैं, फिर हमें दुख होता है, उसको शोक कहते हैं। और मोह का सीधा अर्थ है कि अपने आप को शरीर मानते हैं, माया के कारण मोहित हो जाते हैं और भौतिक वस्तुओं में आनंद मोह इसलिए सोचते हैं। अब शरीर है तो शरीर से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अपना मानते हैं और समझते हैं कि ये हमारी है, हमारे कल्याण के लिए। हालांकि ये भौतिक आसक्ति जो है वो सदैव हमारे दुख का कारण बनती है, लेकिन जीव माया के द्वारा इतना ज्यादा मोहित हो जाता है कि हर एक वस्तु को अपना समझता है और इसी के कारण उसको दुख मिलता है। ये हमारा, राधा गोविंद महाराज बोलते थे कि ये हमारा ना निजी अनुभव है कि अगर ट्रेन में कभी बैठते हैं, आपके पास रिजर्व्ड सीट नहीं होती है और टीसी आपको अलाव करता है कि ठीक है आप आ जाइए, भले अंदर खड़े हो जाओ, टिकट है, रिजर्व्ड सीट नहीं है, तो फिर अगर आपको खड़े होने के लिए जगह मिल जाती है ना तो आप खुश हो जाओगे, चलो ठीक है खड़े होकर ही चले जाता हूँ। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही सीट रिजर्व्ड है और वो सीट आपको नहीं मिली है या फिर कोई और बैठ गया या कुछ भी हो गया, तब अगर आपको खड़ा होना पड़े फिर तो समझो वो व्यक्ति इतना दुखी होगा उसी टाइम पर, इतना उसको गुस्सा आ रहा, मेरी सीट है ये, मेरी रिजर्व की हुई सीट है, ये बंदा कैसे बैठ सकता है, मतलब इतना उसको दुख हो रहा होगा, इतना क्रोध। क्यों? क्योंकि वो मोह में है कि ये मेरा है और जहाँ मेरा शब्द आता है ना वहां पर दुख का कारण बनता है। ये जीव समझ नहीं पाता कि मेरा शब्द ही दुख का कारण है। अगर मेरा नहीं है तो फिर आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। किसी भी वस्तु से ये जो मोह है ना वही हमारे दुख का कारण बनता है। तो ये मोह समाप्त हो जाता है जब भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है हृदय के अंदर। शोक मोह और भय का नाश। भय क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ी सी भी भक्ति भगवान की करते हैं तो बहुत बड़े भय से हम बच सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि वो कौन सा भय है जिससे बचा जाता है? क्या कोई जिन भूत का, कोई है ना, कोई मुझे मार ना डाले, क्या मैं फेल ना हो जाऊं एग्जाम में, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो इस भौतिक जगत से रिलेटेड है जिसके खोने का भय। लेकिन ये तो हम, क्योंकि हम बहुत लोकस्य अजाना, तो हम क्योंकि बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं, बुद्धि नहीं है, इसलिए अपने आप को इन भौतिक वस्तुओं के खोने का भय समझते हैं कि इसी भय की बात हो रही। लेकिन वास्तव में भगवान इस भय की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो वो भय है जो संपूर्ण भय जितने भी हैं उससे सबसे बड़ा भय है, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु का भय। मगर यहाँ पर यह बात समझने की है कि मृत्यु तो अनिवार्य है। अगर कुछ भी हो जाए, कोई भी अगर थोड़ी सी भी बुद्धि रखेगा तो वो यही सोचेगा कि जो आनी ही है उसके लिए क्या भय करना, वो तो आनी ही है, आज नहीं तो कल आएगी। वास्तव में भक्तों, सबसे बड़ा भय जानते हो क्या है? पुनर्जन्म का। कि अभी तो चलो ठीक है, जो सिचुएशन है, जो सर्कमटेंसेस हैं, उसको हैंडल किया जा सकता है क्योंकि वो हमारे सामने है और हम अपनी बुद्धि से, क्योंकि मनुष्य बने हैं तो मनुष्य बुद्धि यूज करके उन सर्कमटेंसेस के अंदर भी भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है, भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकता है। लेकिन भय तो उस बात का है कि यदि ये सारी नेक्स्ट जब जन्म होगा, यदि ये सारी फैसिलिटीज मुझसे छीन ली जाएंगी, मेरे पास कान ही नहीं होंगे, भले मनुष्य ही बनूं लेकिन श्रवण न कर सकूं तो कैसे उन्नति करूंगा, कैसे प्रगति करूंगा? यदि जिह्वा नहीं होगी तो कैसे उच्चारण करूंगा? यदि घर में विग्रह नहीं होगी तो कैसे सेवा करूंगा? तो यदि भक्तों का संग नहीं मिलेगा, यदि व्हाट्सएप वाली मोबाइल नहीं होगी तो फिर कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करूंगा? ना, अगर ये फैसिलिटीज नेक्स्ट जन्म में नहीं मिली तो फिर भक्ति आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीव को सदैव सदैव सावधान रहना चाहिए कि ये जन्म ही मुझे अपना सार्थक करना है, ये समय ही सार्थक करना है, ये दिन ही सार्थक करना है, ये क्षण ही सार्थक करना है, क्योंकि आगे का कोई पता नहीं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है वो आपके इस भय को भी विनाश कर देता है, क्योंकि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं जो वास्तव में भक्ति करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो यह श्रीमद् भागवतम महापुराण ऐसा ग्रंथ है, केवल श्रवण करने से ही ये सारे कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रवण करेंगे उससे भक्ति प्राप्त होगी और मोह को दूर करने के लिए कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा, और है ना, शोक को दूर करने के लिए कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा, या भय को दूर करने के लिए। केवल भागवतम श्रवण करने से ही पहले क्या होगा, कृष्ण के अंदर प्रेम बढ़ेगा। श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पूर्व, भगवान श्री कृष्ण के अंदर भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति का साधारण मतलब ये है कि कृष्ण के लिए हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम उत्पन्न होगा कैसे? श्रीमद् भागवतम से। पहले भगवान के अंदर भक्ति होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, उसके बाद आना विरक्ति होगी, मोह समाप्त तो हो जाएगा, भौतिक अन्य जितने भी पदार्थ हैं उनसे मन हट जाएगा, और है ना, शोक समाप्त तो हो जाएगा, जो कुछ पीछे हो गया है वो सब, है ना, दुख जिसका हो रहा है बार बार वो हट जाएगा, और भय खत्म हो जाएगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, कृष्ण के प्रति सब पता चल जाएगा हमें कि क्या कृष्ण है, क्या कृष्ण की करुणा है। केवल श्रवण करने से, केवल श्रवण करने से ही ये समस्त कार्य हो जाएंगे। और आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, स संहितां भागवतीं कृत्वानो क्रम्य चात्मजं। स संहितां, स मतलब वह, संहितां यानी वैदिक साहित्य, यानी श्रीमद् भागवतम महापुराण, भागवती ये केवल भगवान के साथ संबंधित है। इसका संबंध किसी भौतिक वस्तु से नहीं, इसके अंदर कोई भी जुगुत्सुत नहीं है, कोई भी कहताव नहीं है, इसके अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण से संबंधित ना हो। ससंहितां भागवती कृत्वानु क्रम्य चात्मजा, कृत्वानु क्रम्य यानी पहले तो उन्होंने इस संहिता को कृत्वा, कृत्वा मना बनाया, उसको लिखा, उसको संकलन किया, उसके बाद अनुक्रम्य यानी इस महान ग्रंथ को रचने के बाद, अनुक्रम्य का मतलब होता है कई बार गौर से देखना, जैसे प्रूफ रीडिंग करते हैं ना, बार बार उसको देखते हैं, विचार करते हैं। उन्होंने अनुक्रम्य चात्मजा, पहले उन्होंने देखा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई कुछ चीज छूट तो नहीं गई है, एक एक शब्द को, एक एक श्लोक को विचार करके उसके बाद क्या किया, आत्मजम, आत्मजम का मतलब होता है पुत्र, यानी उनके आत्मा का अंश, मतलब इसको बोलते हैं आत्मज, बोलते हैं पुत्र को। अब यहाँ पर सुखदेव जी की विशेषताएं बताई जा रही हैं। पहला तो वो क्या है, वो भगवान के पुत्र हैं, पुत्र हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर अनुराग है, आत्मजम है। तो आगे क्या बताते हैं, शुकम अध्यापयामास, शुकम और उस पुत्र का नाम क्या है, सुखदेव गोस्वामी। अध्यापयामास मतलब उनको पढ़ाया। और निवृत्ति निरतम मुनि, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी की एक दूसरी विशेषता भी बताई गई है कि निवृत्ति निरतम मतलब जिनका मन कभी संसार में कभी लगा ही नहीं, निरत, निवृत्ति निरतम। जैसे भौतिक लोग होते ना, सदैव संसार में लगे हुए होते हैं, लेकिन भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल भी आकर्षण न हो, केवल भगवान के अंदर जिसका मन लगा हो, इसको कहते हैं निवृत्ति निरतम। तो सुखदेव गोस्वामी का मन 24 घंटे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में लगा होता था, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगा होता था। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटीज बता रहे हैं, स संहितां भागवतीं कृत्वानु क्रम्य चात्मज, कि वो क्योंकि वेद व्यास जी के पुत्र थे, आत्मज थे, तो उनसे बहुत प्रेम करते थे वो। और वेद व्यास जी के वाक्य में, क्योंकि वो स्वयं भी कहते हैं, आगे हम भागवतम में पढ़ेंगे, सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि हित्वा पैलादि शिष्य, कि पैल और जैमिनी दूसरे जितने भी ऋषि हैं, उन सब वो सब वेदव्यास जी के शिष्य थे, जैसे जैमिनी ऋषि थे, पैल थे, पराशर मुनि थे, वो सब वेदव्यास जी के शिष्य थे। परंतु वो कहते हैं हित्वा पैलादि शिष्य, पैल और जैमिनी इत्यादि जितने भी ऋषि हैं उनको हित्वा, उनको छोड़कर ये भागवतम मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या वेदव्यास जी ये भेदभाव कर रहे थे कि ये मेरा पुत्र है तो मैंने पढ़ाऊं उनको नहीं पढ़ाऊं, ऐसा नहीं है। दूसरे भी वेदव्यास जी के पुत्र थे और जैमिनी इत्यादि जो दूसरे ऋषि थे उनको बहुत है ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, भगवान के अंदर उनकी भी बहुत रुचि थी, परंतु उनकी रुचि अदर सब्जेक्ट्स में भी थी, मतलब ज्यादा रुचि जो थी ना वो दूसरे सब्जेक्ट, भगवान के अंदर इतना ज्यादा उनको रुचि नहीं थी, अदर सब्जेक्ट्स में ज्यादा थी। जैसे जैमिनी ऋषि कर्म कांड में ज्यादा है ना रुचि रखते थे, और दूसरे कथा कहानियां बताने में, जैसे हम महाभारत वगैरह पढ़ते हैं इस तरह जो कहानियां हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो थे वो तो एक शब्द बोलते भी नहीं थे। वेद व्यास जी ने जब उनको जब वो पैदा हुए थे, जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म अभी तक नहीं हुआ था, वेद व्यास जी ने बहुत बहुत भगवान की आराधना की थी, भगवान की बहुत ज्यादा आराधना करके भगवान से वरदान मांगा था कि भगवान मुझे कोई ऐसा पुत्र दो जिसको मैं भागवतम, यानी भागवतम महापुराण रच कर रख दिया। जब जब ना नारद मुनि ने आदेश दिया कि आप भागवतम की रचना करो, तो भागवतम को रच के उसको अनुक्रम कृत्वानुक्रम्य उसको बहुत बहुत बाहर देख कर जांच पड़ताल करके रख दिया था। और वो अब सुखदेव गोस्वामी के जन्म का इंतजार कर रहे थे कि कोई, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी और भगवान ने उन्हें यह वरदान दिया था कि हाँ तुम्हें ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी गर्भ में आए, उसके बाद इतने सालों तक, 12 सालों तक तो वो गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब वो गर्भ से बाहर आए उनकी बहुत बहुत प्रार्थना पर, तब जैसे ही वो संसार में आए वो घर त्याग कर चले गए। और वो चले गए, वो आगे जा रहे हैं और वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और कह रहे हैं हा पुत्र हा पुत्र, दुखी होकर उनको उसको बुला रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कोई हमारी तरह ये भौतिक आसक्त व्यक्ति नहीं थे, वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरा बेटा चला जाएगा, मैं बेटे के बगैर कैसे जीऊंगा, ये नहीं सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि अब जब सुखदेव चला गया, जो कि इतना मतलब भागवतम पढ़ने के लिए केवल वही, अब देखो भागवतम पढ़ने के लिए भी विशेषताएं आवश्यक है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम को पढ़ने से पहले हमें श्रीमद् भगवद गीता को कंप्लीट करके उसको समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सिद्धांत नहीं समझेंगे ना, तब तक लीला में दोष कर बैठेंगे और इस तरह से उन्नति होने की बदले में और भी हमारा भक्ति में पतन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ना बहुत बहुत ऐसे सोचा था कि मैं सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाऊंगा, दूसरे शिष्यों को नहीं पढ़ाया था, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी कि वो भगवान के अंदर उसकी मति लगी हुई थी, भगवान के सर्वश्रेष्ठता को वो जानते थे, भगवान की भक्ति की महिमा को जानते थे। तो केवल वही वेदव्यास जी के समस्त शिष्यों में केवल सुखदेव गोस्वामी ही इस योग्य थे कि उनको भागवतम पढ़ाया जाए। तो फिर जब वो चले गए तो उनको यही दुख हो रहा था कि अब मैं भागवतम किसको पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने वेदव्यास जी ने एक ऐसी योजना बनाई कि अपने जो दूसरे शिष्य थे उनको कुछ एक दो श्लोक जो है वो कंठस्थ करा दिए और उनको कहा कि तुम जब जंगल में जाओ ना लकड़ियां लेने के लिए, तो जहाँ पर सुखदेव बैठा होगा तपस्या करने के लिए, तुम उसके सामने जाकर ये श्लोक पढ़ना। और उसके सामने जाकर वो श्लोक पढ़ने लगे और उनमें दो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट वो जो पढ़ रहे थे, एक में भगवान की सुंदरता का गुण, बहुत बहुत जब भगवान मथुरा आए थे फर्स्ट टाइम, और फिर उस टाइम पर वरहा पीदमा नटवर वपु, उस समय एक श्लोक उच्चारण हुआ था वो वाला श्लोक, और दूसरा जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया था अहोबकी उद्धव जी के मुख से ये श्लोक उच्चारण होता है कि ऐसी पूतना जो भगवान को विष पिलाकर मारने के लिए आई है, भगवान उस पूतना के ऊपर भी कृपा करते हैं। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने इन श्लोकों को सुना तो फिर वो बार बार बोल रहे थे, अच्छा कितना अच्छा बोल रहे हो, आप वापिस से बोलो, बार बार बुलवा रहे थे, बार बार बुला रहे थे और सीखना चाह रहे थे कि मुझे भी इस तरह से भगवान के शब्दों को बोलना है, कितने सुंदर शब्द ये उच्चारण कर रहे हैं, बार बार बोल रहे थे, एक दफा वापिस से सुना। तो फिर है ना उन्होंने बोला, जो वेदव्यास जी के शिष्य थे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को बोला, आप एक दो श्लोकों के लिए इतना मर रहे हो, इतने हमारे गुरु महाराज ने तो 18,000 श्लोक की रचना की है, एक से बढ़कर एक सारे श्लोक हैं, और आप हमें सिर्फ एक दो श्लोक आ रहे हैं उसके लिए ऐसे कर रहे हो। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आपके गुरु महाराज कौन है, मुझे लेके चलो ना उनके पास, मैं उनसे सीखूंगा। तो फिर उन्होंने बताया कि वेदव्यास जी हमारे गुरु महाराज हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जानते ही थे ये तो मेरे पिताजी हैं। तो फिर वो जो निवृत्ति निरतम मुनि है, यानी कि संपूर्ण आसक्ति को त्याग कर, पिता और माता के समस्त मोह को त्याग कर, भगवान में जो भगवान कृष्ण में आसक्त होकर बैठे थे। अब यहाँ पर ये समझना है हमें कि सुखदेव गोस्वामी कोई निराकार ब्रह्म में लीन नहीं हो गए थे, वो भगवान की मतलब वास्तव में सुखदेव गोस्वामी का मन निर्विशेष ज्योति में आसक्त नहीं था, भगवान की लीलाओं में उनका मन आसक्त था, वो सदैव भगवान की लीलाओं में रमन करते थे, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे भक्त भगवान के जो समस्त भौतिक मोह से निवृत्त होकर जन्मते ही भगवान के लीलाओं का आनंद लेने के लिए भौतिक मोह से निवृत्त हो गए, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को भी श्रीमद् भागवतम महापुराण इतना आकर्षित कर रहा था। यानी कि आज हम सोचते हैं, कभी कभी मैं ऐसा लगता है कि ये तो बेचारा पहले से भक्त है, अगर नहीं श्रवण करता है तो ओके है, तो भक्त ना भगवान से प्रेम करता, क्या वो सुखदेव गोस्वामी से भी महान भक्त होंगे, क्या वो चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु ने मतलब ये ऐसा बताया चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से ही आचरण बताते हैं कि उस दिशा में जब वो कृष्ण के विरह भाव में थे तब भी भागवतम को गाना सुनना सदैव यही करते थे। वास्तव में भक्तों, ये जीवन है, जीवन का लक्ष्य है श्रीमद् भागवतम महापुराण का अध्ययन। भागवतम कोई साधन मात्र थोड़ी है कि सिद्धि को प्राप्त कर लिया या कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया तो साधन को छोड़ दिया। ये कोई ऐसे नहीं है कि जैसे हम रक्षा में बैठते हैं तो जब जहाँ पर हमें उतरना होता है उधर उतर जाते हैं अपने लक्ष्य तक पहुँच कर, और फिर पीछे मुड़कर देखते भी नहीं है कि रक्षा आ रहा है कहाँ जा रहा है, कभी भी नहीं देखते। जैसे ट्रेन में अगर हम सफर करते हैं और हम लोग उतर जाते हैं उस जगह से जगह पर अपनी, और आगे जाकर यदि ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाता है तो भी हमें इतना ज्यादा दुख नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है शुक्र हम तो उतर गए। हालांकि उस समय भी वहां पर दूसरे लोग भी होते हैं जिनको शायद हम जानते भी होते हैं इतना टाइम उनके, लेकिन फिर भी बाद में साध्य जो होता है ना, सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साध्य में कोई आकर्षण नहीं रहता। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं है, इसीलिए तो वेदव्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, कि ये भागवतम का रस जो है वो आलयम, आलयम का मतलब होता है अंत तक, मुक्ति तक आपको पीना है, मुक्ति के बाद भी कृष्ण कथा सर्वत्र चलनी चाहिए। तो ये इतनी महान ग्रंथ के विषय में बताया जा रहा है। आज हम भागवतम महापुराण को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम सोचते हैं कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का मतलब तो यही है ना कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तो हम वैसे ही कृष्ण से प्रेम करते हैं, श्रवण करने में इंटरेस्ट नहीं रखते, हम खाली कीर्तन करेंगे। किस मूर्ख ने कह दिया कि खाली कीर्तन करके आपको कृष्ण प्राप्त होंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी देखो हम यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कभी भी ऐसे शुद्ध वैष्णवों के साथ सिर्फ है ना कीर्तन करते थे, इसे मतलब अंदर आने की परमिशन भी नहीं होती थी साधारण व्यक्तियों को कि आप चैतन्य महाप्रभु जब भाव आवेश में आकर कीर्तन करते थे, डांस करते थे, नृत्य करते थे, तो फिर क्या होता था, सिर्फ जो बहुत ज्यादा उनके अंतरंग पार्षद होते थे ना वही केवल होते थे। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु सुबह को तभी वो कथा करते थे, सबको सुनाते थे कृष्ण के विषय में, तो फिर ना आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इस तरह से नहीं होता था कि बस अभी आया भक्ति में शुरू हो गया और कितना, लेकिन श्रवण पहले ज्यादा जरूरी है। परीक्षित महाराज मरने वाले थे, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु थी, तभी भी सुखदेव गोस्वामी ने उनको ये नहीं कहा कि चलो ठीक है बजाओ मृदंग, मैं कीर्तन करता हूँ तुम डांस करो और फिर है ना तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोला बैठो इधर श्रवण करो, श्रवण करने से तुम्हारी भक्ति में रुचि उत्पन्न होगी। तो श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है, आज हम श्रवण की महिमा को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो कि निवृत्ति निरतम मुनि, जो समस्त भौतिक आसक्ति से निवृत्त हो गए थे, उनको पढ़ा रहे हैं, और वो इतना आतुर होकर अपने पिता के पास आए कि हाँ पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ, पिताजी मुझे ये ग्रंथ जो आपने अपने शिष्यों को सुनाया है ये शब्द मुझे सीखने हैं। तो फिर वो कृष्ण के इन गुणों ने कृष्ण के इन शब्दों ने उनको भी अपनी ओर आकर्षित किया, और एक एक श्लोक को एक एक अक्षर को उन्होंने अपने पिताजी से पढ़ा। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम महापुराण का वास्तव में संकलन किया गया जब यह कलयुग स्टार्ट हुआ था, यानी परीक्षित महाराज के राज्य में जब कलयुग आया था उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन किया गया था, और महाभारत और दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं वो उससे पहले ही बना दिए गए थे, पहले ही उन्होंने वेदव्यास जी ने लिख लिया था। लेकिन उन्होंने नारद मुनि ने इन्हें बताया था कि ये सब लिखकर कल्याण नहीं होगा जब तक कि हम भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करें, क्योंकि भगवान की कथाओं को श्रवण करने से ही जीव के अंदर भक्ति उत्पन्न होगी, और भक्ति का उत्पन्न होने के बाद ही जीव का वास्तविक कल्याण यानी कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। इतना सुनने के बाद शौनक मुनि एक शंका प्रकट करते हैं। शौनक कहते हैं, शौनक उवाच सवय निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा ब्रहीति मेताम् आत्मरामः समभ्यस आत्मारामः समभ्यसत् स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा ब्रहति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत् स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा ब्रहति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत् स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा ब्रहीति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत् स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा ब्रहीति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत् स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। शब्दों का अर्थ देखिए। शौनक उवाच। शौनक ने कहा सवय मतलब वह निश्चय ही निवृत्ति यानी आत्म साक्षात्कार के पथ पर निरतः सदैव लगा हुआ सर्वत्र सभी प्रकार से उपेक्षतः उदासीन मुनि कस्य किस कारण से वा अथवा ब्रहतीम अर्थात विशाल एताम इस आत्मराम अर्थात अपने आप में प्रसन्न रहने वाला समभ्यसत यानी अध्ययन किया। अनुवाद। शौनक ने सूत गोस्वामी जी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्त मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप से प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे विशाल साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। यानी कि साधारण लोग क्या सोचते हैं कि अगर जीवन की सिद्धि क्या है कि भौतिक जो कितने काम है उनको छोड़ के अगर हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर चले जाते हैं तो वो सिद्धि है। जो लोग इंद्रिय भोग से में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण कार्य में स्थिर है वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बनता है। यानी कि जैसे साधारण लोग होते हैं ना, उनमें से कोई एक, हजारों में से कोई एक ऐसा होता है जो आत्म साक्षात्कार करके आत्माराम बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ब्रहति मेता आत्माराम समभ्यस, तो ये आत्माराम जो है वो एक ही बनता है हजारों में से। और आत्म का अर्थ है स्व तथा आराम का मतलब होता है सुख पाना। यानी कि जो अपने आप में ही आनंद पाता है उसको भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति परम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ बदल सकता है। मतलब हर कोई सुख का पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि आनंद क्या है। आनंद सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ बदल सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामियों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनसिक होते हैं। अब कर्मी लोग क्या सोचते हैं कि भौतिक आनंद प्राप्त करके मुझे सुख होगा, लेकिन आत्मराम का सुख जो होता है वो भिन्न होता है, वो उन भौतिक वस्तुओं की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते। यहाँ पर शीला सुखदेव गोस्वामी के बारे में शौनक मुनि कहते हैं, कस्य वा बृहति मेताम् आत्मा राम समप्यसत। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी। वो वेद मतलब बाय बर्थ वो आत्माराम थे, उनको किसी भी भौतिक वस्तु में कोई आकर्षण नहीं था, तो भी उन्होंने इस बहुत ही बृहतीम का मतलब होता है इतना विशाल बृहत भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया, उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी। जब वो पहले से ही भक्ति में इतना बड़े चढ़े थे तो फिर उनको जरूरत क्या थी इतने बड़े शास्त्र को पढ़ने का कष्ट उठाने की। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम उन आत्मारामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि श्रीमद् भागवतम कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप उसको पढ़ना छोड़ दो, बस अब आपको श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं आएगा। क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी जो इतने महान थे, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी की चार विशेषताएं बताई शौनक मुनि ने। सबसे पहले क्या बताया, सवय निवृत्ति निरत। निवृत्ति निरत का मतलब होता है जो कि भगवान का रस ले रहे हैं तो संसार के समस्त रसों से निवृत्त हो गए हैं, अब उनको भौतिक किसी वस्तु में कोई आनंद नहीं आ रहा है, संसार के किसी भौतिक भोग की ओर कोई आकर्षण नहीं है। और सर्वत्रोपेक्षको मुनि, सर्वत्रोपेक्षको का मतलब होता है कि साधारण जीव क्योंकि भौतिक सर्वत्र उपेक्षित होते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के बारे में दूसरी योग्यता बता रहे हैं सर्वत्रोपेक्षको, यानी कि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं है और कोई भी मतलब भौतिक वस्तु की प्राप्ति की उनकी कोई भी, सिर्फ खाली भौतिक वस्तु ही नहीं, सर्वत्रोपेक्षको मतलब ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की भी उसकी इच्छा नहीं है, पृथ्वीलोक को प्राप्त करने की उसकी इच्छा नहीं है, स्वर्ग लोक के भोग को भी प्राप्त करने की उनकी इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट ट्रेस्ट प्राप्त कर लिया, आत्मा राम है वो, क्योंकि वो अपने स्व में अपने आत्मा में वो आनंद कर रहे हैं, यानी कि कृष्ण में रम रहे हैं आत्मा, क्योंकि कृष्ण का अंश है और कृष्ण के अंदर जब वो मतलब कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेता है तो उसे किसी भी वस्तु का आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वो वही उनका वास्तविक सुख होता है। तो फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं क्योंकि वो निवृत्ति निरत है, समस्त भौतिक वस्तुओं से बिल्कुल भिन्न है, उनके बिल्कुल भी है ना उनको अच्छी नहीं लगती कोई भी वस्तु भौतिक, और सर्वत्रोपेक्षको और सारी चीजों को उन्होंने बिल्कुल उपेक्षित कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे वो मुनि हैं, मुनि का मतलब होता है जो मननशील हैं और जो केवल भगवान की लीलाओं का मनन करते हैं, बार बार मन को भगवान के विषय में ही केवल मन को अगर कोई कार्य है उनके मन का तो केवल भगवान के विषय में वो सोचते हैं। यहाँ पर मुनि बहुत ही सुंदर शब्द है कि वो अभी तो पहले तो वो भौतिक वस्तुओं में कोई आकर्षण नहीं है, हर तरह हर लोक के समस्त सुखों को उन्होंने बहिष्कृत कर दिया, उपेक्षित कर दिया, वो मुनि है। फिर उसके बाद कस्य वा बृहतीम, ये इतना बड़ा ग्रंथ जिसके 18,000 श्लोक हैं, कितना समय लगा होगा उनको पढ़ना, उनको अनुनय करना, इनको समझना, एक एक शब्द को श्लोक को सीखना, अब जब उनको बाद में प्रचार करना है तो उन्होंने कितनी मेहनत से अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कस्य वा बृहती मेता आत्माराम, ये चौथी क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है कि वो तो आत्माराम है, फिर उनको ऐसा श्लोक ऐसा ग्रंथ पढ़ने की, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत थी, वो बैठ जाते और बैठ के भगवान के पवित्र नाम का जप करते काफी था, है ना, उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन जो भगवान की यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भले ही कितनी ही आत्माराम भक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि उनका भागवतम में प्रेम नहीं है तो समझो उन्होंने भक्ति को समझा ही नहीं। क्योंकि जो प्रेमी होता है उसकी एक ही अभिलाषा होती है कि मैं सदैव अपने प्रीतम के विषय में श्रवण करूं, मैं अपने प्रीतम के कार्यकलापों के विषय में, यहाँ पर जैसे जो द्वारिका की महतियां जो रानियां थी वो भी क्या करती हैं, उनको बताती हैं रोहिणी माता को कि हमारी बहुत इच्छा है, हम कृष्ण के विषय में सुनना चाहते, बचपन में कैसे लीलाएं करते थे। मतलब जो प्रेम करेगा वो अवश्य ये जानना चाहेगा, सदैव उसके बारे में सुनना चाहेगा। तो भले ही वो आत्मा राम है, भौतिक समस्त वस्तुओं की उपेक्षा कर ली, लेकिन फिर भी भागवतम की उपेक्षा नहीं कर पाए, भागवतम के विषय में, भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा उनकी समाप्त नहीं हुई। तो यहाँ पर शौनक मुनि कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, उनको जब भौतिक वस्तुओं की कोई आकर्षण था ही नहीं, तो ये भागवतम पढ़ने के लिए कैसे आए। यानी कि इन्होंने इतना बड़ा भागवतम साहित्य, इतना विशाल साहित्य पढ़ने का कष्ट क्यों किया। तो कल सुत गोस्वामी बताएंगे कि वो उन्होंने इतना बड़ा कष्ट क्यों किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।